नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि विश्व के देशों के लिए आतंकवाद से निपटने में साझा चुनौतियों पर सहयोग करना पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक है। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्पेन के विदेश मंत्री होसे मैनुअल अल्वारेस बवेनो के साथ बैठक के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और स्पेन दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था में बदलाव आ रहा है और दुनिया को आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनानी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अगले महीने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवस्थित विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वे स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में एक सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री वैष्णव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़े पैमाने पर अपनाने में सबसे बड़ी बाधा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू की कम उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार से सहायता प्राप्त सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत इस चुनौती का समाधान कर रहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं। उन्होंने कहा कि ये समझौता वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को नया रूप दे सकता है। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन के दौरान सुश्री उर्सुला फॉन ने कहा कि वे सप्ताह के अंत में भारत पहुंचेंगी। उन्होंने बताया कि समझौते से 2 अरब लोगों का बाजार बनेगा जो दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा होगा। सुश्री उर्सुला फॉन ने कहा कि यूरोप तेजी से वृद्धि कर रहे देशों और इस सदी की आर्थिक महाशक्तियों के साथ व्यापार करना चाहता है। वहीं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता भी 25 से 27 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। वे इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हैं। संयुक्त रूप से भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने कहा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उपनिवेशवाद की निशानी है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भावना का उल्लंघन करती है। कल एक संवाददाता सम्मेलन में श्री लावरोफ ने कहा कि ग्रीनलैंड ऐतिहासिक रूप से नॉर्वे और डेनमार्क का उपनिवेश था। ये 20वीं शताब्दी में डेनमार्क का संबद्ध क्षेत्र बना। श्री लावरोफ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 17 ऐसे क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया है जो अब भी किसी अन्य देश के नियंत्रण में हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने आगामी केरल विधानसभा चुनाव के लिए विनोद तावड़े को चुनाव प्रभारी और शोभा करंदलाजे को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया है। श्री नितिन ने आगामी तेलंगाना नगर पालिका और नगर निगम चुनाव के लिए आशीष शेलार को चुनाव प्रभारी तथा अशोक परनामी और रेखा शर्मा को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के राज्य स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि ये राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवंत परंपराओं और असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इन राज्यों ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अनूठी परंपराओं, भाषाई विविधता और उद्यमशील लोगों के माध्यम से देश के ताने बाने को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि त्रिपुरा की विकास यात्रा परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। उन्होंने कहा कि मेघालय की जनता ने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में घने कोहरे छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में आज शीतलहर का प्रकोप रहेगा। विभाग ने ये भी बताया है कि उत्तराखंड में पाला पड़ने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी में आज 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 622 अंक गिरकर 81,558 और निफ्टी 182 अंक की गिरावट के साथ 25,051 पर थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।